दिन भर तारीख 23 मार्च दिन बुधवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। ब्रसेल्स हमले के पीछे दो भाइयों का हाथ बताया जा रहा है। चरमपंथी निरोधक दस्ता लगातार कर रहा है छापेमारी।
Очень надеюсь, что европейцы перед лицом страшной угрозы терроризма, который вновь...
रोहित वेमुला के समर्थन में हैदराबाद पहुंचे जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार नहीं प्रवेश कर पाए विश्वविद्यालय में। हॉस्टल में रह रहे छात्रों की बढ़ रही हैं दिक्कतें।
पूरा इमरजेंसी का सिचुएशन है। कैंपस के अंदर जो है पानी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेट बंद करा दिया है, खाना जो है मेस बंद करा दिया है, और यूनिवर्सिटी भी 4 दिनों के लिए लगातार बंद कर दिया है।
बताएंगे कश्मीरी पंडितों के उन मंदिरों का हाल जो चरमपंथ के दौर का निशाना बने। खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। बेल्जियम के राष्ट्रीय प्रसारक आरटीबीएफ के अनुसार ब्रसेल्स में कल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बम धमाके करने वाले दो हमलावरों की पहचान कर ली गई है। ये दोनों भाई हैं और इनका नाम खालिद और इब्राहिम अल बकरवी है। आरटीबीएफ के अनुसार इन दोनों के बारे में पुलिस पहले से ही जानती थी। सीसीटीवी पर दिख रहे तीसरे व्यक्ति की तस्वीर बेल्जियम पुलिस ने जारी कर दी है। ब्रसेल्स पर कल हुए चरमपंथी हमले के पीड़ितों के लिए बेल्जियम में 1 मिनट का मौन रखा गया। ब्रसेल्स के केंद्र में स्थित प्लेस डे ला बोर्स में हजारों लोग इकट्ठा हुए और वहां मृतकों की स्मृति में मोमबत्तियां और फूल रखे गए। यूरोपीय संघ के मुख्यालय में किंग फिलिप, बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय संघ के अन्य नेता भी इस मौके पर इकट्ठा हुए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि सभी यूरोपीय देशों को अपने भौगोलिक और राजनीतिक खेलों को दरकिनार कर चरमपंथ के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। उन्होंने चरमपंथ के इस खतरे के सामने यूरोप से एकता की अपील की। रूस के द्वारा यूक्रेन से क्रीमिया को ले लेने के बाद यूरोप ने रूस के साथ चरमपंथ निरोधी सहयोग बंद कर दिया था। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से हिलरी क्लिंटन ने एरिजोना से प्राइमरी चुनावों में जीत हासिल कर ली है। दोनों ही उम्मीदवारों ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से उम्मीद से ज़्यादा की बढ़त हासिल की। सिएटल में एक रैली को संबोधित करते हुए हिलरी क्लिंटन ने इन नतीजों का स्वागत किया।
I'm also very proud to have won Arizona tonight. It's exciting. It's exciting.
मुझे आज एरिजोना से जीतने पर गर्व है। यहाँ नतीजों को आते देखना बहुत रोमांचक होता है, क्योंकि वॉशिंगटन की तरह एरिजोना और कई अन्य राज्य भी ये समझते हैं कि ये चुनावी लड़ाई दो अलग उम्मीदवारों के बीच नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के दो मूल रूप से अलग नजरिए और मूल्यों के बीच है। ये थे हिलरी क्लिंटन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वियतनाम के एक प्रमुख ब्लॉगर को अपनी लोकतांत्रिक आज़ादी का दुरुपयोग करने के आरोप में 5 साल के कैद की सज़ा दी गई है। अंग्युएन हुविन का ब्लॉग समाचार, टिप्पणी और सरकार की अंदरूनी जानकारी का मिश्रण हुआ करता था। ब्लॉगर के सहायक को भी 3 साल की सज़ा दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक दोनों ने सत्ताधारी पार्टी में लोगों के भरोसे को कमज़ोर किया है। दक्षिण अफ्रीका के न्याय मंत्रालय ने 83 राजनीतिक कैदियों के शवों को निकालने के निर्देश दिए हैं। इन सभी को रंगभेद के जमाने में फांसी दी गई थी। प्रिटोरिया जेल के मैदान में उनके शवों को दफनाया गया था। इन शवों की शिनाख्त की जाएगी और इन्हें दोबारा अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा जाएगा। मृतकों में से ज्यादातर लोग रंगभेद विरोधी दो प्रमुख संगठन पैन अफ्रीकनिस्ट कांग्रेस और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदस्य थे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि अभी अभी आपने समाचारों में सुना, ब्रसेल्स में मंगलवार यानी कि कल हुए चरमपंथी हमले के पीछे दो भाइयों का हाथ बताया जा रहा है। चरमपंथी निरोधक दस्ता लगातार छापेमारी कर रहा है। इस बीच एक तीसरे हमलावर की तलाश में बुधवार को पुलिस ने एंडरलेक्ट इलाके में छापेमारी की। फ्रांस का कहना है कि यूरोपीय संघ की सीमाओं पर सख्ती बढ़ाने की ज़रूरत है। वहीं रूस ने कहा है कि चरमपंथ से निपटने के लिए क्षेत्रीय राजनीति को दरकिनार करके एकजुट रखना वक्त की मांग है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए अमर शर्मा से।
बेल्जियम मीडिया के अनुसार खालिद और इब्राहिम अल बकरवी नाम के दो भाइयों ने हमले को अंजाम दिया था। आरबीटीएफ चैनल के एक वरिष्ठ पुलिस सूत्र के हवाले से कहा गया है कि इब्राहिम ने ज़ेनवेटेम हवाई अड्डे पर आत्मघाती हमला किया था जिसमें 14 लोग मारे गए थे, जबकि उनके भाई खालिद ने मेट्रो स्टेशन पर आत्मघाती हमला किया था जिसमें 20 लोग मारे गए थे। आरबीटीएफ के अनुसार पुलिस को उन दोनों भाइयों के बारे में पहले से जानकारी थी और उनका आपराधिक रिकॉर्ड था। इस बीच एक तीसरे हमलावर लाचारवी की तलाश में एंडरलेक इलाके में पुलिस छापेमारी कर रही है। बेल्जियम में 3 दिनों का राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। तथाकथित इस्लामिक स्टेट ने कहा है कि इन हमलों के पीछे उसका हाथ है और उसने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसे और हमले किए जाएंगे। विश्लेषकों का कहना है कि ये तीसरा हमलावर लाचारवी बम बनाने में माहिर है। फ्रांस की मीडिया के अनुसार पिछले साल नवंबर में पेरिस में हुए चरमपंथी हमलों में भी लाचारवी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। पेरिस हमले में 130 लोगों की मौत हुई थी। फ्रांस के प्रधानमंत्री मैनुअल वाल्स ने आरोप लगाया है कि कट्टरपंथी इस्लाम के खतरे पर यूरोप ने आंखें मूंद ली हैं। फ्रेंच रेडियो से बात करते हुए वाल्स ने कहा है कि ब्रसेल्स में कल हुए हमलों को देखते हुए यूरोपीय संघ की सीमाओं पर सख्ती को बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया है। जर्मनी की विदेश मंत्री से बैठक के बाद रूस के विदेश मंत्री सरगेई लेवरोव ने चरमपंथ के भू राजनीतिक खेल को भुलाकर चरमपंथ के खतरे से निपटने के लिए एकजुट होने की अपील की है। यूरोपीय संघ ने रूस के साथ किसी भी तरह के सहयोग पर रोक लगा दी थी जब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था।
बेल्जियम पर कल हुए हमले के बाद आतंकवाद का खतरा एक बार फिर साफ दिखाई दे रहा है। इसके मद्देनजर मुझे उम्मीद है कि यूरोप विचारधारा और भू राजनीतिक खेल को एक तरफ रखकर एकजुट होगा और हमारे महाद्वीप पर आतंकवादियों के ये तमाशे बंद होंगे।
ये थे सरगेई लेवरोव के शब्द। सरगेई लेवरोव से मुलाकात के बाद जर्मनी की विदेश मंत्री फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर ने कहा कि देशों को चरमपंथ से लड़ने के लिए मिलकर काम करना होगा।
ब्रसेल्स में हुआ बर्बर हमला उस खतरे का बस एक और उदाहरण मात्र है जिससे हम जूझ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये हमारे आपसी हितों की बात है कि हम इस चुनौती का मुकाबला करें। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में आपसी सहयोग को हमारे साझा कार्यक्रम में शामिल करना ही होगा।
ये थे फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर के शब्द। ब्रसेल्स में छापेमारी के दौरान पुलिस को कीलों और रासायनिक पदार्थों से भरा एक विस्फोटक डिवाइस और इस्लामिक स्टेट का झंडा मिला है। बीबीसी ने उन दस्तावेजों को देखा है जिनमें खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी समूह के यूरोप में काम करने के तौर तरीकों की जानकारी मिलती है। फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी DGSI ने गिरफ्तार किए गए इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों से पूछताछ की जानकारी का ट्रांसक्रिप्ट जारी किया है। इन दस्तावेजों से उनकी ट्रेनिंग, हथियारों की जानकारी मिलती है।
अमर शर्मा बता रहे थे कि किस तरह से चरमपंथ निरोधी दस्ता वहां लोगों की छापेमारी कर रहा है और खोज कर रहा है। ब्रसेल्स हमले के बाद वहां मौजूद एक भारतीय नागरिक राघवेंद्र गणेशन के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वो भारतीय आईटी कंपनी इंफोसिस में काम करते हैं। उनका परिवार मुंबई में रहता है। कंपनी ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि उसने ब्रसेल्स में मौजूद अपने सभी कर्मचारियों से संपर्क स्थापित कर लिया है, लेकिन इस कर्मचारी से कोई संपर्क नहीं हो सका है। कंपनी का कहना है कि वो लापता भारतीय नागरिक के परिवार वालों के संपर्क में है और भारतीय दूतावास से भी इस बारे में मदद ली जा रही है। कंपनी का ये बयान ब्रसेल्स में भारतीय राजदूत के उस बयान के बाद जारी किया गया है जिसमें राजदूत ने एक भारतीय टीवी चैनल से कहा था कि दूतावास इंफोसिस के लापता कर्मचारी को लेकर चिंतित है। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं अजय शर्मा। अजय, ये बताइए कि अब तक ब्रसेल्स हमलों के बारे में हम क्या क्या चीज़ें जानते हैं। अजय
जी, ब्रसेल्स शहर के उत्तर पूर्व में ज़ेवेंटम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां 2 दोहरे धमाके हुए। एक और धमाका शहर के बीच माइलबीक मेट्रो स्टेशन पर हुआ जिसके पास ही यूरोपियन यूनियन की इमारतें हैं। ये हमले ब्रसेल्स में 13 नवंबर के पेरिस हमलों के मुख्य संदिग्ध सालाह अब्देसलाम की गिरफ्तारी के 4 दिन बाद किए गए। जिन लोगों ने हमले किए उनके नाम बेल्जियन मीडिया ने खालिद और इब्राहिम अल बकरावी बताए हैं, जिनके बारे में पुलिस पहले से जानती है। बेल्जियन ब्रॉडकास्टर RTBF के मुताबिक खालिद अल बकरावी शायद मेट्रो पर हुए हमले का खुदकुश हमलावर था। उसके भाई इब्राहिम को ज़ेवेंटम एयरपोर्ट के CCTV कैमरे में देखे गए संदिग्धों में से एक माना गया है। काले कपड़े पहने हुए दोनों व्यक्ति अपने बाएं हाथों में दस्ताने पहने थे जिससे इन खबरों को बल मिला कि उनमें डिटोनेटर छिपाए गए थे। ब्रसेल्स पुलिस ने हैट पहने हुए एक व्यक्ति के लिए वारंट जारी किया जिसे हफ्ते भर पहले अब्देसलाम का सहयोगी बताया गया था। IS से जुड़ी आमाक न्यूज एजेंसी पर जारी एक बयान में इस्लामिक स्टेट ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली और इन्हें विस्फोटक बेल्टों और डिवाइसों के जरिए किए गए धमाके बताया। ज़ेवेंटम एयरपोर्ट पर चेक इन वाली जगह भारतीय समयानुसार सुबह 12:30 बजे एक के बाद एक 2 धमाके हुए। एक चश्मदीद ने विस्फोट से पहले गोलियां चलने और अरबी में नारेबाजी की आवाजें सुनने का भी दावा किया। एक घंटे बाद शहर के बीच मौजूद माइल बीक मेट्रो स्टेशन पर एक धमाका हुआ जिसके पास यूरोपियन यूनियन के कई दफ्तर हैं। हमले के समय 3 डिब्बों वाली ट्रेन स्टेशन से निकल रही थी। बम बीच वाले डिब्बे में फटा। ड्राइवर ने तुरंत ट्रेन रोकी और पहले और आखिरी डिब्बे खाली करा लिए। तीनों धमाकों में अब तक 30 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन मरने वालों की तादाद अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो सकी है। बेल्जियम के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक एयरपोर्ट पर 11 लोग मारे गए और 81 जख्मी हुए। उधर ब्रसेल्स के मेयर के मुताबिक मेट्रो धमाके में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं। बेल्जियम के फेडरल प्रोसिक्यूटर की चरमपंथ विरोधी शाखा ने इन हमलों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने ब्रसेल्स के आसपास छापेमारी में इस्लामिक स्टेट के झंडे के अलावा कुछ केमिकल भी बरामद किए हैं। हमलों के बाद बेल्जियम ने चरमपंथ के खतरे का स्तर सर्वाधिक कर दिया है। ब्रिटेन ने उधर अपने नागरिकों को ब्रसेल्स की यात्रा न करने की सलाह दी है। उधर ज़ेवेंटम एयरपोर्ट को बुधवार और गुरुवार के लिए बंद भी किया गया। शहर का मेट्रो रेल यातायात भी बंद किया गया।
बहुत बहुत शुक्रिया अजय शर्मा। ये बता रहे थे कि ब्रसेल्स हमले से जुड़ी जानकारियाँ अब तक हमारे पास कौन सी उपलब्ध हैं।
दिन भर शॉर्टवेव 25, 31 और 41 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,595 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
रुख भारत का करते हैं। हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला की आत्महत्या का मामला गर्माता जा रहा है। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की काम पर लौटते ही दोबारा उपजे तनाव के बीच आज जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार विश्वविद्यालय परिसर में एक सभा संबोधित करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। प्रशासन ने नेताओं और मीडिया कर्मियों सहित बाहरी लोगों के विश्वविद्यालय में प्रवेश पर रोक लगा रखी है। कक्षाओं को भी 4 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। हॉस्टल में बिजली नहीं है, हॉस्टल में पानी नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, एटीएम कार्ड से छात्र पैसे नहीं निकाल सकते। कन्हैया को हैदराबाद विश्वविद्यालय परिसर में एक सभा को संबोधित करना था, लेकिन जैसा हमने बताया वहां अनुमति नहीं मिली। कन्हैया हैदराबाद में पहुंचे और उन्होंने कहा,
आज के ही दिन हैदराबाद आने का एक अपना महत्व है। महत्व ये है कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में साथी रोहित ने अपना बलिदान दिया है इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को सच करने के लिए। ये हम छात्रों, नौजवानों और इस देश के नागरिकों के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि साथी रोहित ने कहा कि दलितों का पैदा होना एक हादसा है, यह एक बहुत बड़ा तमाचा है इस देश की व्यवस्था के ऊपर। तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि रोहित को जिन हालात में मौत को चुनना पड़ा वो हालात कैंपसेस के अंदर ना बने। इसीलिए साथी रोहित ने जो सपना देखा है सामाजिक न्याय के को समाज के अंदर लागू कराने का, यूनिवर्सिटी में लागू कराने का, वो सवाल एक प्रोमिनेंट सवाल है।
रोहित वेमुला की हत्या का मामला गर्माता जा रहा है और अब जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। अब से कुछ देर पहले मैंने बात की हैदराबाद में स्थानीय पत्रकार मुबाशिर खुर्रम से और पूछा कि कन्हैया ने क्या क्या कहा और विश्वविद्यालय में राजनीति किस तरह से गर्म हो गई है।
कन्हैया जब हैदराबाद पहुंचे तो उन्होंने रोहित वेमुला की माँ से मुलाकात की और उनके पांव छूते हुए कहा कि रोहित की मौत को बेकार जाने नहीं देंगे और रोहित एक्ट के इनेक्टमेंट तक ये कोशिश उनकी जारी रहेगी। जेएनयू विवाद की सबसे अहम वजह यह रही कि एनडीए गवर्नमेंट ने एचसीयू में रोहित वेमुला की मौत से लोगों का ध्यान हटाने के लिए जेएनयू विवाद को इतना बढ़ावा दिया कि सेडिशन चार्जेस जैसे केसेस में जेएनयू के यूनियन के यूनियन लीडर्स को अरेस्ट करवाया, लेकिन रोहित वेमुला के इशू को दबने नहीं दिया जाएगा, रोहित वेमुला के लिए इंसाफ की कोशिशें जारी रखेंगे। और अभी अभी जो इत्तला मिली है कि अभी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी कन्हैया कुमार पहुंचे हैं, एंट्री के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है।
आज जब कन्हैया वहां पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर लोगों को संबोधित किया, छात्रों को संबोधित किया, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनको आने की अनुमति नहीं दी थी, तो क्यों नहीं दी थी?
कल 17 जनवरी को जब रोहित वेमुला की मौत हुई थी उसके बाद विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और उस वक्त वाइस चांसलर अप्पा राव लॉन्ग लीव पर थे। रोहित वेमुला के डेथ पे प्रोटेस्ट के लिए जब कन्हैया कुमार आ रहे हैं इसकी इतला 3 दिन पहले कंफर्म हुई, तो कल ये 23 को आ रहे हैं, जब इतला मिली तो 22 को वाइस चांसलर ने अपना चार्ज रिज्यूम किया। वाइस चांसलर के चार्ज रिज्यूम करने के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ है वो प्रोटेस्ट को सामने रखते हुए विश्वविद्यालय ने रजिस्ट्रार ने पुलिस को एक लेटर लिखा जिसमें कहा कि पॉलिटिशियन, आउटसाइडर्स, मीडिया और कोई और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स को एंट्री नहीं दी जाएगी। आज विश्वविद्यालय में ये सिचुएशन है कि स्टूडेंट्स का जो हॉस्टल में हैं उनके लिए खाना नहीं बनाया गया, लाइट कट ऑफ है, वाईफाई कनेक्शन बंद है, इंटरनेट कनेक्शन बंद है, स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनके एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं, वाटर सर्विसेज ब्लॉक कर दी गई है, तमाम गेट यूनिवर्सिटी के बंद हैं।
तो आपको क्या लगता है कि ये जेएनयू का मुद्दा और जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मुद्दा है ये दोनों एक साथ जुड़ के अब आगे चलेंगे और किस तरह से सियासत हो रही है वहाँ पर?
ये यूनिवर्सिटी से उठने वाली जो सियासत है ऐसा लग रहा है कि ये आइडियोलॉजी की जंग शुरू हो चुकी है और यूथ इस जंग में उतर चुके हैं। अभी रोहित वेमुला के इशू पर आज जो कन्हैया कुमार ने बात कही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से रोहित के इशू को दबाने के लिए जेएनयू के इशू को इतना बढ़ावा दिया गया और उन्होंने ये क्लेम किया है कि इस तरह की प्रोटेस्ट जेएनयू में होते रहे हैं लेकिन पहली मरतबा सेडिशन जैसे चार्जेस का इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया। इसका सिर्फ एक ही कारण था कि रोहित वेमुला की डेथ, एक दलित स्टूडेंट की डेथ को दबाया जाए। कल एचयू में स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज के बाद जेएनयू में अप्पा राव का एफिजी बर्निंग हुआ। ये दोनों मुद्दे साथ साथ हो चुके हैं और इसी के साथ साथ उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आज एक सुसाइड हुआ है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जो सुसाइड हुआ है वो भी शायद इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स की एक फोर्स आइडियोलॉजिकल फाइट की तरफ बढ़ रही है।
ये बताइए कि आज कुछ FIR दर्ज की गई है?
एक FIR हुई है जो कल प्रोटेस्ट के बीच जो पथराव हुआ उस पर पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए 26 स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया है जिन्हें चरलापल्ली जेल यानी हैदराबाद सेंट्रल जेल जो है वहां पर शिफ्ट किया गया है और उसके खिलाफ भी आज HCU में प्रोटेस्ट अभी जारी है।
हैदराबाद के स्थानीय पत्रकार मुबाशिर खुर्रम बता रहे थे कि इस समय हैदराबाद विश्वविद्यालय में राजनीति किस तरह से गर्म है और चल क्या रहा है। लेकिन जैसे कि हमने आपसे कहा कि हॉस्टल की स्थितियां बड़ी खराब हैं, वहां पर बिजली काट दी गई है, पानी काट दिया गया है, इंटरनेट कनेक्शन काट दिया गया है, छात्र ATM कार्ड से पैसे नहीं निकाल सकते, हॉस्टल में किस तरह की स्थिति है? अमर शर्मा ने संपर्क साधा हैदराबाद विश्वविद्यालय में PhD कर रहे छात्र विशाल कुमार से।
बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे पूरा इमरजेंसी का सिचुएशन है और कल शाम के बाद कल सुबह से ही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे काफी सारे CRPF रैफ और पुलिस तेलंगाना पुलिस है और आज जो है जहाँ पे हम लोग नॉर्थ के सॉफ्टकॉम में वेलीवाड़ा के पास जहाँ प्रोग्राम करते हैं वहाँ पे चारों तरफ से पुलिस कवर की हुई है। कैंपस के अंदर जो है पानी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ने पानी बंद करा दिया, इंटरनेट बंद करा दिया है, खाना जो है मेस बंद करा दिया है और यूनिवर्सिटी भी 4 दिनों के लिए लगातार बंद कर दिया है अपने से ही। तो एक तरह से कैंपस में कोई भी चीज करने के लिए मनाही है, लोग कुछ भी बाहर सर्कुलेट नहीं कर पा रहे, इन्फॉर्मेशन फ्लो नहीं हो पा रहा है यहाँ से कहीं बाहर, मीडिया को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है, किसी भी बाहरी स्टूडेंट्स को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है जो भी हमारी सोसाइटी में आना चाहते हैं। तो ये तमाम चीजें अभी चल रही हैं। खाना बनाने को लेके हम लोग अलग से अरेंजमेंट कर रहे थे कि स्टूडेंट कम्युनिटी को हम लोग, जब अगर प्रशासन जो है बंद करा रहा है मेस को तो हम लोग एक अल्टरनेटिव कम्युनिटी किचन चलाएंगे और उसको भी ये लोग बंद करने के लिए पुलिस का और हमारे 2-4 साथियों को आज भी जो है डिटेन किया और कुछ शाम में अभी छोड़ा है कुछ देर के लिए।
आप लोग प्रशासन का कोई प्रतिनिधि है जिससे आपकी बात हो रही है?
नहीं नहीं, प्रशासन का कोई भी प्रतिनिधि हमसे बात नहीं कर रहा है और अभी तक कोई बात नहीं हो पाई है।
तो ये बंद कराने कौन आ रहा है आपके अल्टरनेटिव मेस को?
वहाँ के जो स्टाफ हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, वो प्रशासन के साथ है अभी खड़े हो गए हैं। तो ये खास तरह का साजिश है कि वर्कर्स को, वर्किंग क्लास को स्टूडेंट मूवमेंट से एकदम अलग कर दिया जाए और उनको एलिनेट कर दिया जाए मूवमेंट से, ताकि स्टूडेंट मूवमेंट जो भी यहाँ पे हो रहा है रोहित के मुद्दे को और लेके वो खत्म हो जाए, ये उनकी साजिश लग रही है।
और जिन छात्रों को आप बता रहे हैं गिरफ्तार किया गया था उनकी क्या स्थिति है अभी?
कल शाम में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उसमें जहाँ तक सुनने में आया है कि जो टीचिंग फैकल्टी थी उसके ऊपर तो कोई चार्ज शायद नहीं लगा है, लेकिन जो स्टूडेंट कम्युनिटी थी, जो भी 25-30 स्टूडेंट थे और उनको अभी भी मैंने कस्टडी में रखा गया है, रिलीज नहीं किया गया है।
हैदराबाद के छात्र विशाल कुमार बता रहे थे कि हॉस्टल्स में किस तरह की स्थिति है और छात्रों को किस तरह की दिक्कतों से दोचार होना पड़ रहा है।
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और आपको बता दें कि इस समय भारत के बेंगलुरु में T20 वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश और भारत का मुकाबला हो रहा है, चौथा ओवर खेला जा रहा है, मैच का पूरा विस्तृत हाल हम कार्यक्रम में आगे आगे लेके आएंगे। और अगर मैं इस समय का स्कोर बताऊं तो 19 रन भारत बना चुका है, भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है और इस समय चौथा ओवर आखिरी गेंद 19 रन, रोहित शर्मा और शिखर धवन खेल रहे हैं, दोनों इस समय 9-9 रन पे हैं, सीधा चौका लगाए, शिखर धवन 13 रन पर पहुंच चुके हैं। तो ये है मैच का हाल इस समय और कार्यक्रम के अंत में हम एक बार फिर से पूरी मैच की रिपोर्ट आप तक लाएंगे। विशेष श्रृंखला कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर पर अब तक विशेष रिपोर्ट में आपने वहाँ चरमपंथ से दोबारा जुड़े होने के खतरे और वहाँ बचे कुछ कश्मीरी पंडितों के जीवन पर रिपोर्टें सुनी हैं। आज की विशेष रिपोर्ट है कश्मीरी पंडितों के मंदिरों पर, जिन में से कई मिलिटेंसी के दौर में या तो गिरा दिए गए या फिर उन्हें जला दिया गया, आज उन मंदिरों का क्या हाल है। कश्मीर में कई मंदिरों के दौरे करने के बाद जुबैर अहमद ने ये रिपोर्ट तैयार की है।
श्रीनगर में ऊंचे पहाड़ों के दामन में यह है शिव मंदिर। पहाड़ आपके पीछे हो तो सामने डल झील नजर आती है। शायद इस जगह की शांति, एकांत और सुंदरता को ध्यान में रखते हुए ही महर्षियों ने योग के लिए इस जगह का चयन किया होगा और शायद इसी कारण यहाँ से सटी जमीन पर मुगल बादशाह जहांगीर ने निषाद बाग बनवाया होगा। यहाँ कभी एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था, पर आज मंदिर के परिसर की सभी इमारतें नई हैं। महाराज कृष्ण पंडिता इसके सेवक हैं।
ये निषाद गार्डन के साथ में ही एक पुराना 5,500 साल पहले पुराना एक श्राइन है, शिव टेंपल है यहाँ का। ये आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये पुराना प्राचीन शिवलिंग है पांडवों के ज़माने का, कोई 5,500 साल पहले इसकी हिस्ट्री जो हमने यहाँ डिगिंग की, जो यहाँ पे हमें पत्थर मिले उनमें शारदा लिपि में लिखा हुआ है कि ये 5,500 साल पहले का शिवलिंगम है।
पंडिता जिस संस्था के लिए काम करते हैं, इसने इस पूरे मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत करा के इसमें एक नई जान फूंक दी है।
और यहाँ इस मंदिर की हालत देखी, सारी धर्मशालाएं सब मंदिर यहाँ डैमेज हो गए थे, हमने फिर दोबारा इसको रिवाइव करने की कोशिश की। आज आप ये देख सकते हैं, इसको हमने शिव मंदिर पूरा कंप्लीट बना दे दिया, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से शिवलिंगम को उठा के अपनी जगह बिठा दिया। अब आज यहाँ लोग आते हैं, यात्री लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, जिन्होंने सुना है कि यहाँ पे ये दोबारा रिवाइव हो गया है।
इस निजी संस्था ने अब तक वादी के 14 मंदिरों और तीर्थ स्थानों की मरम्मत कराई है। कश्मीर में मिलिटेंसी के दौर में कितने मंदिर तोड़े या जलाए गए, इसका सही से अंदाजा किसी के पास नहीं, लेकिन मंदिरों के पुनर्निर्माण के काम में जुटे कुलगाम के विनोद पंडित कहते हैं कि 70-80 मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया या उन्हें जलाया गया। उनकी निजी संस्था ने भी कुलगाम के एक मंदिर की मरम्मत कराई है जिसे 3 साल पहले दोबारा खोला गया। वो कहते हैं,
तो 2013 से हमने नए सिरे से जो 3-4 ये मंदिर जो आप देख रहे हैं इनका नए सिरे से हमने निर्माण किया, क्योंकि हमारी आस्था इन मंदिरों के साथ जुड़ी है और हमने अपनी आस्था की रखवाली के लिए हमने तन मन और दिन रात इसके लिए हमने मेहनत करनी है और आगे भी हम करते रहेंगे। और ये माता कात्यायनी मंदिर एक ही कश्मीर के हैं, कश्मीर में हैं, जो तहसील कुलगाम, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, साउथ कश्मीर में पड़ता है।
मंदिर हो या तीर्थ स्थान, कश्मीरी पंडितों की जिंदगी का ये एक अटूट हिस्सा है। कश्मीर घाटी की गोद से लेकर हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों और इसके दामन में सैकड़ों मंदिर और तीर्थ स्थान हैं। कश्मीरी पंडितों के पलायन के बावजूद इन स्थानों से लगाव के कारण इनमें से कई जम्मू से घाटी आकर मरम्मत के काम में लगे हैं। श्रीनगर में चंद्रपुरा हरवन मोहल्ले में माता भवलेश्वरी का एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ मरम्मत का काम शुरू हुआ था लेकिन फंड की कमी के कारण इसे पूरा नहीं किया जा सका है। इस मंदिर के परिसर में एक टूटी फूटी इमारत है जिसकी मरम्मत नहीं हो सकी है। इसी तरह श्रीनगर के एक पहाड़ के दामन में एक शिव मंदिर है जिसके पुश्तैनी पुजारी ने एक जली इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा,
मेरा नाम रतनलाल कोल है, हम इस मंदिर के पुजारी हैं और हमारे पिताजी भी इस मंदिर के पुजारी थे। यह आप धर्मशाला देख रहे हैं, इसके 93-94 में आग लगा दिया गया लुटेरों ने और इस मंदिर की मूर्ति भी ले गए, वो ब्लैक स्टोन लक्ष्मी नारायण की मूर्ति थी वो भी ले गए।
अच्छा, तो वो कौन लोग थे कुछ पता चला
नहीं, ऐसे ही वो मिल्टनसी में हादसा हो गया,
ये मरम्मत नहीं हुआ?
नहीं जी, इसमें सिटे है, लावड़ा का ये सिटे है, इसमें तामीर नहीं कर सकते हैं फिर।
क्यों?
ग्रीन बेल्ट आता है इस साइड, ग्रीन बेल्ट आता है।
अच्छा, ग्रीन बेल्ट है।
हाँ जी।
अच्छा, तो जिन लोगों ने इसको आग लगाई थी उनके खिलाफ केस भी हुआ?
नहीं जी नहीं, ये मिल्टनसी का चल रहा था उस टाइम, कौन केस लगाए, गवर्नमेंट उनसे भी डरती थी। ये मंदिर बंद पड़ा था कोई 10-12 साल बंद पड़ा था, उसके बाद कोई 8-7 साल से हमने फिर से खोल दिया है।
यहाँ पूजा होती है?
हाँ जी बिल्कुल होती है, सुबह शाम आरती होती है, टूरिस्ट भी आते हैं।
श्रीनगर में मुसलमानों की एक घनी आबादी के बीच एक शानदार शिव मंदिर है, जिसे देखकर ही लगता है कि इसकी हाल में मरम्मत हुई है। महर्षि पंडिता इस मंदिर की रखवाली 1960 से कर रहे हैं।
ये मंदिर 700 साल पुराना है, तो इसमें मैं यहाँ पर 60 से रह रहा हूँ, तो जो इसकी में मूर्ति है, शिवलिंग जो है, वो तकरीबन 2000 साल से ज़्यादा पुराना होगा। मंदिर पे उन्होंने किया आगजनी लगा दी, 2-3 बार आग लगाया इसमें रात के समय। फिर यहाँ पर महले वालों ने सिक्योरिटी पुलिस को बताया और उन्होंने सिक्योरिटी मंगवाई यहाँ पर, जो यहाँ महले में सब हिंदू रहते थे वो यहाँ से चले गए, और जो हमारे नेबर थे मोमडन, तो उन्होंने भी हमारा थोड़ा हेल्प कर दिया।
सभी कश्मीरी पंडितों ने हमें बताया कि अब मंदिरों पर हमले नहीं होते, मरम्मत के काम में बाधा नहीं होती और कश्मीरी मुसलमानों का उन्हें पूरी तरह से सहयोग हासिल है। लेकिन समस्याएं अब भी कई हैं। कुछ मंदिरों की मरम्मत के बावजूद वहां पूजा करने वाले कश्मीरी पंडित नहीं हैं, कुछ बंद पड़े हैं। कुछ मंदिरों के दरवाज़ों पर तख्तियाँ टंगी हैं जिनमें मंदिर के रखवालों के नाम और फ़ोन नंबर लिखे हैं। कोई पूजा करने में दिलचस्पी रखता हो तो उसे फ़ोन करके पुजारी को बुलवाना पड़ता है। लेकिन अधिकतर मंदिर खुले हैं, कुछ मंदिर खास धार्मिक अवसर पर ही खोले जाते हैं। यहाँ रहने वाले कश्मीरी पंडित कहते हैं कि अगर पंडितों की वापसी हुई तो ये मंदिर उनका स्वागत जरूर करेंगे। जुबैर अहमद, BBC श्रीनगर।
और आपको बता दूं कि अगले कार्यक्रम में आप सुनेंगे हमारा स्थायी कार्यक्रम दुनिया जहान। कार्यक्रम में बात खेल की। सीधे कार्यक्रम में आपको ले चलते हैं चेन्नई स्वामी स्टेडियम, जो कि बेंगलुरु में है, और वहां पर इस समय एक मैच खेला जा रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच। शुभ ज्योति इस समय इस मैच को देख रहे हैं, बताइए शुभ ज्योति कैसा चल रहा है मैच?
अभी अच्छा चल रहा है, इंडिया ने टॉस हारा और बांग्लादेश कैप्टन मशरफी बिन मुर्तजा ने इंडिया को पहले बैट करने के लिए भेजा, तो इंडिया रोहित शर्मा विदाउट एनी लॉस, रोहित शर्मा और शिखर धवन ये दो बल्लेबाज खेल रहे हैं। अभी मुस्ताफिजुर रहमान की बॉलिंग पर दो छक्के मारा शिखर धवन ने, तो इसी के साथ इंडिया का स्कोर काफी रिस्पेक्टेबल पोजीशन में आ गया ये हम बोल सकते हैं। लेकिन शुरुआत उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अभी लगता है कि वो दोनों पिक कर रहे हैं धीरे धीरे।
तो इस समय मतलब जो भारत के सलामी बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा और शिखर धवन दोनों क्रीज पे मौजूद हैं, और धाकड़ जिसको कहते हैं छक्के देखने का आनंद उठा रहे हैं आप?
हाँ बिल्कुल, ये तो पूरे स्टेडियम चकाचक भरे हुए हैं, बेंगलुरु के चेन्नई स्वामी स्टेडियम, आज छुट्टी का दिन भी है और इंडिया कप का दो चुका है, ये पहली बार खेल रहा है, और बांग्लादेश के साथ ये जो मैच है ये इंडिया के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, सेमीफाइनल जाने के लिए ये जितना बहुत जरूरी है, और उसी की लक्ष्य में खेल रहा है इंडिया, और सपोर्ट भी है भरपूर।
किस तरह के नारे आपको सुनाई दे रहे हैं, हिंदुस्तान के समर्थन में ज्यादा नारे हैं या बांग्लादेश के समर्थन में?
बांग्लादेश के समर्थन में नारे बिल्कुल नहीं है, जैसे आप एंटिसिपेट कर सकते हैं, पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फिर भी कुछ इंडियन सपोर्टर्स ने बांग्लादेश को सपोर्ट किए थे इधर, लेकिन आज ज्यादा से ज्यादा 100 बांग्लादेश सपोर्टर होंगे, इधर उधर भटके हुए हैं, लेकिन बाकी पूरे स्टेडियम 50,000 की लगभग कैपेसिटी है इनका, पूरे इंडिया को सपोर्ट कर रहे जोरदार, और जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया का, अगर हम सुनते हैं वो तो चल ही रहे हैं, और बाकी इंडिया का बल्लेबाजी भी चल रहा है जोश से, तो अभी देखना है कितना दूर तक जा पाए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया शुभ ज्योति सीधे कार्यक्रम में बेंगलुरु से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और इससे पहले की कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। बेल्जियम के राष्ट्रीय प्रसारक आरटीबीएफ के अनुसार ब्रसेल्स में कल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बम धमाके करने वाले दो हमलावरों की पहचान कर ली गई है। ब्रसेल्स पर कल हुए चरमपंथी हमले के पीड़ितों के लिए बेल्जियम में एक मिनट का मौन रखा गया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि सभी यूरोपीय देशों को अपने भौगोलिक और राजनीतिक खेलों को दरकिनार कर चरमपंथ के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। अमरीका में रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से हिलरी क्लिंटन ने एरिजोना से प्राइमरी चुनावों में जीत हासिल कर ली है। बीबीसी समाचार।
और बता दें आपको कि पहला विकेट गिर गया, बांग्लादेश को एक सफलता हासिल हुई और कौन आउट हुआ है, रोहित शर्मा आउट हुए हैं। अगली सभा में फिर हाजिर होंगे। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा, मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।